इस आयत में हम देख चुके हैं कि जानिया का लफ्ज पहले क्यों आया, और जानिया मुअन्नस का लफ्ज है, जिना करने वाली औरत फाइला के वजन पे। पहली बात है कि जिना हो नहीं सकता जब तक औरत खुद कोशिश ना करे या औरत इसका सबब ना बने। दूसरी वजह यह कि अक्सर औरत ही इसका बायस बनती है। और तीसरी वजह यह है कि औरत इखलाकी अहकामात पर जब अमल नहीं करती तभी यह अमल होता है। फजलिदू का लफ्ज़ जो है ये कोड़े मारने पे है। अब यहाँ आपको एकदम ये सज़ा हो सकता है बोझल लगी हो, लेकिन इस्लाम का मिजाज चूँकि तदरीज का है तो जहन में रखिएगा कि जिना की ये सज़ा भी फौरन नहीं आई। इससे पहले सूरत निसा की आयत नंबर 15 में हम ये पढ़ चुके जिसमें औरतों के बारे में बता दिया गया कि जब कोई औरत गलत काम करे तो उसको घर में बंद कर दो। यानी शुरू में घर के अंदर बंद करने की सज़ा थी, और उसी के अंदर इशारा था इस बात का कि हो सकता है अल्लाह ताला इनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। वल्लाति यातीन अल्फाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशहिदु अलैहिन अरबतम मिनकुम फइन शहिदु फमसिकुहुन्न फिल बुयूति हत्ता यतवफ्फाहुन्न अल-मौत औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला। और तुम्हारी औरतों में जो बेहयाई का काम करें इनमें अपने में से 4 मर्द गवाह ठहरा लो, फिर अगर वो गवाही दें तो औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि इनको मौत आ जाए या अल्लाह इनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। यह आयत जब नाजिल हो चुकी थी तो जब सूरत नूर की ये आयत नाजिल हुई जो अभी हमारा सबक है, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला, कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। और अब दूसरा हुक्म आ गया जिसका तस्करा यहाँ पे है। तो यहाँ से पता चला कि पहले जहन साजी कर दी गई, औरतों को घरों में रहने का हुक्म था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुक्म जो था असल शक्ल से दूसरी तरफ आ गया। फिर फरमाया कि तुम इन दोनों पर रहम ना खाओ इस सज़ा के लागू होते वक़्त। ला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुम फ़ी दीनिल्लाही इन कुंतुम तूमिनून बिल्लाही वल्यौमिल आखिर। ये आयत उस इसकी तफसीर सारी वो हो गई जो भी हमने बात की कि किस तरह आज नॉन मुस्लिम और अपने मुसलमान इस्लाम से तो कम हमदर्दी रखते हैं, उनको मजलूमों से ज़्यादा जालिमों से हमदर्दी है। और जब भी बात करेंगे तो ऐसी सज़ाओं के ऊपर बात करेंगे, ये दुरुस्त है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो लिहाजा अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके ऊपर हद लगाते हुए तुम्हें कोई भी रहम नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो कानून तोड़े। अब देखिए कि जिस मुल्क की पुलिस को मुजरिमों से हमदर्दी हो जाए, रहम आने लगे, तो क्या वहाँ कभी चैन आएगा? कोई हुक्मरान सिर्फ कानून बनाए तो चोरों को पनाह देने वाले, डाकुओं को, लुटेरों को, जानियों को तो अच्छे लगेंगे। तो फिर कैसे हो सकता है कि अपने मुल्कों में तो हम कहते हैं जी रूल इज़ रूल, तो अल्लाह के मुल्कों में, अल्लाह की दुनिया में रहते हुए हम कोई रूल्स ना माने। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, और चाहिए कि मुशाहिदा करे दोनों की सज़ा को अहले ईमान का एक गिरोह। या हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कोड़े मारने का क्या अमल है और कैसे होना चाहिए और ये किस तरह से होगा। देखिए कि जिना की सज़ा चूँकि बड़ी सख्त है ना, तो इसके लिए शरायत भी बड़ी सख्त है। कैसे ही पकड़ के, मसलन आप कहते हैं फलां लड़का लड़की के साथ था, अच्छा अकेले थे, कोई गलत काम कर ही लिया होगा, चलो पकड़ो इनको कोड़े मारना शुरू करो, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली शर्त वो भी हम सूरत निसा में पढ़ चुके हैं कि जब भी ये कोई अमल होगा तो ये सरेआम होगा। कम से कम 4 मुसलमान इस अमल को बिलफेल होता देख लें, 4। दूसरी बात यह कि जिना के केसेस में औरत की गवाही नहीं ली जाती, क्योंकि औरतें अमूमन जज्बाती होती हैं, ऐसी बातों को बुनियाद बनाकर बाज़ दफ़ा वो दूसरी तरफ हो जाती हैं। फिर अगली बात यह है कि जिना की सज़ा उस वक़्त लागू होगी जब मुलज़िम या मुजरिम जो भी वो ख़ुद एतराफ़ कर ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आते हैं, गामदिया कबीले की एक औरत थी, वो आई और उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है। आपने उसकी बात सुनी नहीं, अनसुनी अनसुनी की, उसने इसरार किया। बिल आखिर आपने बात जब ये सुनी कि अब तो पेट में बच्चा भी है, तो आपने उसको कहा कि फिर बच्चे का क्या कसूर है, बच्चा पैदा होगा फिर आना। फिर वो गई, फिर छोटा बच्चा पैदा हुआ जब, तो उसको लेके आई, फिर कहा अल्लाह के नबी मुझे हद लगा दें। ज़रा सोचे तो सही, ये है ना मुआशरे कि नफ्स के हाथों गुनाह हो जाता है इंसान से, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर वो ख़ुद पेश कर देते हैं अपने आप को सज़ा के लिए ताकि आखिरत की सज़ा से बच जाए। फिर आपने कहा कि नहीं ये बच्चा खाएगा तो फिर लाना, और कुछ महीने के बच्चे को रोटी का टुकड़ा हाथ में दे के वो औरत ले आई कि अल्लाह के नबी गुनाह सोने नहीं देता। अगर इस हाल में मर गई तो मेरे साथ वहां क्या होगा? ये है असल में इन कुंतुम तू मैनू नबिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और फिर अल्लाह के नबी ने उस औरत को हथ लगवाई और उसके जिस्म से कुछ खून के छींटे खालिद बिन वलीद के कपड़ों पे गिर गए, तो मुंह से गलत बात निकल गई क्योंकि दिल में कराहत थी ना कि गंदा काम किया था इस औरत ने। कहा कि जाते जाते औरत मुझे नापाक कर गई, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर इसकी तौबा को अल्लाह मदीना शहर के लोगों में बांट दे, बाज़ जगह 40 का लफ्ज़ आता है, बाज़ जगह नहीं भी आता, तो कहा कि अल्लाह ताला इतने लोगों की बख्शिश कर दे, पाक होगी वो। फिर अगली बात यह कि जब किसी पे हद लग जाए तो कोई उसको आहार नहीं दिला सकता। फिर इसके बाद अगली बात यह है कि इस बात में अगर चार गवाहों में से कोई एक गवाही देने से हट जाए कि नहीं मैं नहीं देता, तो बाकी तीन के ऊपर कज़फ की हद लगेगी जो अगली आयतों में आ रही है, यानी तोहमत या बोहतान लगाने की सज़ा होगी। फिर इसके बाद ये कि जो ऐसा गलत काम करने वाला है वो आकिल हो बालिग हो, यानी ऐसे नहीं कि मतलब मिसाल है कि किसी का दिमाग ख़राब है, ऐसे वाक़ होते हैं लोगों के साथ, कोई ज़हनी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर है तो वो किसी के साथ जिना कर ले या उसके ऊपर ज़बरदस्ती ऐसा हमला करे तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर मुसलमान भी हो और बालिग भी हो, और दलाइल इसके मौजूद हैं, किसी को चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। बच्चा अगर ऐसा गलत काम करे तो क्योंकि अल्लाह ताला ने बच्चे को मरफूल कलम रखा है, यानी उसके नेकियां या बदियां नहीं लिखी जाती, तो उसको भी नहीं पकड़ा जाएगा। इसके अंदर यह है कि जब कोई सज़ा देगा तो इस्लामी हुकूमत कायम होनी चाहिए, आज के दौर में नहीं है तो क्या करें? फिर खामोश रहे, कोई किसी का कोई मामला जानता है, खामोश रहे। एक सहाबी खुद भी अपने बारे में अल्लाह के नबी के पास आए थे कि अल्लाह के नबी मेरे से जिना हो गया, तो आपने जब टाला और बाद में फिर इतने खुल के सवाल पूछे कि सहाबा कराम कहते हैं कि हमने अल्लाह के नबी की ज़ुबान से कभी ऐसे खुले लफ्ज़ नहीं सुने थे, लेकिन अल्लाह का मामला है ना। कहा तुम इसको सिर्फ बोसा लेने को तो नहीं जिना समझ रहे, सिर्फ उसको साथ चिपकाने को तो नहीं जिना समझ रहे? जब उन्होंने पूरी तस्दीक की फिर आपने उनको हद लगाई। तो लिहाजा सज़ा इतनी सख्त है तो ये ऐसे आम नहीं होगी। अब आप देखिए कि ऐसा कब होगा कि चार लोग देख के गवाही दें, ये कब होगा? जब क्लबों में होगा, जब ओपन एयर्स में होगा, और जब ये अल्लाह माफ़ करे कि न्यू ईयर के सालों पे होगा, और जब खुशियों के मौके पे होगा और बसंतों के मौके पे होगा। और एक वक्त आएगा, हदीस में आता है कि क़यामत के करीब लोग जानवरों की तरह सड़कों के किनारे जिना करते दिखेंगे, और ऐसे वक्त में कोई किसी को कह दे कि एक दीवार की ओट में चले जाओ तो उसका मुकाम सहाबी जितना होगा। और वल्लाह ही आज ये वक्त अल्लाह दिखा रहा है, जिस तेज़ी से इंसानियत असफल व साफिलीन में गिरती जा रही है वहाँ यही है। वही लोग जो इस बात पे गलत कहते हैं इस्लाम को, वो खुद बेचैन है कि किस तरीके से ये काम किया जाए। फिर उसके बाद अब यहाँ तो ये गैर शादीशुदा की बात है ना, तो शादीशुदा को रजम किया जाता है, उसका तरीका क्या होता है कि ज़मीन में घड़ा खोदा जाता है, फिर उसमें जानी को खड़ा किया जाता है यहाँ तक कि बस उसका सीना बाहर हो, और फिर उसको पत्थर मारे जाते हैं यहाँ तक कि पत्थर फिर उसमें इतने लगते हैं कि वो उसी के अंदर दफन हो जाता है। खड़ा होगा तो भागेगा, औरत है तो उसके जिस्म को भी बांधा जाता है, जैसे हमने पीछे बात की थी चोरी की जद के ऊपर। तो बहरहाल तकलीफ़ तो बहुत है इन चीज़ों में, लेकिन आप देखिए कि आज भी वो मुल्क जहाँ पे ऐसे कामों की सज़ा रखी हुई है, आटे में नमक के बराबर। अल्लाह के नबी के मदनी दौर में बेहतरीन तरीके से शरीयत नाफिज थी, आटे में नमक के बराबर जिना का केस कोई आता था अदालतों में? तो आज इसी से आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा जब ऐसी हदें लग जाती हैं तो उसके बाद फिर लोग किस तरीके से महफूज हो जाते हैं बाकी भी। और ये जो कोड़े मारने की बात है, इसके बारे में भी शरायत हैं। पहली बात यह कि कोड़ा मुंह पे नहीं मारा जाएगा, फिर नाजुक हिस्सों पे नहीं मारा जाएगा, फिर इसी तरह 100 कोड़े इकट्ठे भी मारे जा सकते हैं, और 20-20 कई दिनों में भी मारे जा सकते हैं। कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, तो उसको उस हिसाब से मारे जाएंगे। अल्लाह के नबी के दौर में एक बूढ़े शख्स से जिना हुआ, तो जब सज़ा देने लगे तो कहा अल्लाह के नबी ये तो मर जाएगा, तो फिर आपने एक झाड़ू मंगवाया 100 तिनकों वाला, और जल्लाद को कहा कि इसको एक दफ़ा ये लगा दो। ऐसा भी होगा? इस्लाम तो कोई किसी की जान नहीं लेना चाहता, सिर्फ वो लोगों को चैनलाइज करना चाहता है। यहाँ नोट कीजिएगा, फ़ी दीन अल्लाह, यहाँ अल्लाह ताला ने इसको अपना मामला कहा, अल्लाह के हुक्म से इस तरह ना करो। हदीस में आता है कि सिर्फ़ एक कोड़े की कमी बेशी पर अल्लाह ताला काजी को जहन्नुम में बुला लेंगे। पूछा जाएगा कि क्यों भाई तूने उसको एक कोड़ा कम क्यों लगाया? तो वो कहेगा अल्लाह तेरी मखलूक पे शफकत के लिए रहम आ गया था, तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाएगा कि तू मेरी मखलूक पे मेरे से ज्यादा शफकत रखता था। ला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, तो वो औरत जो माँ से ज्यादा लाड दिखे किसी के या प्यारा के समझे किसी को, उसको तो लोग फब्बे कुटनी कहते हैं ना, कि माँ से ज्यादा लाड देखती है। तो सोचिए कि जब हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह से ज्यादा प्यार करना चाहते हैं तो फिर उसी की वजह से तो खराब हो जाते हैं सारे मामला। फिर ये जो लफ्ज़ है ना ताइफ़तुन, ताइफ़ा का लफ्ज़ है ये छोटे गिरोह के लिए आता है, 3 से लेके 1,000 तक के गिरोह के लिए होता है। ठीक है, 3 ना हो तो 2 या फिर उससे भी कम पे शुरू हो सकते हैं। तो ये क्यों है? ताकि इबरत पकड़ें, शोहरत हो इस सज़ा की और बाकी लोग वो गलत काम ना करें। फिर अगली बात यह कि इस लफ्ज़ को हद क्यों कहते हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि ये सब्र की हद है। जिन कामों से अल्लाह ने रोका था अब उससे ये एक दीवार की तरह अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है, इसलिए ये तुम ना करो ये काम। फिर इसी तरह जिना पर तो आप देखिए कि 100 कोड़े हैं, मगर इस नीयत से औरत को पकड़ा और जिना नहीं कर सका तो क्या होगा? कभी ऐसा होता है अटेम्प्ट की जाती है जिना की लेकिन जिना का फेल नहीं होता और पकड़ा जाता है, तो फिर वो हद ताजीर में बदल जाएगी और उस वक्त का जो काजी है वो जितनी भी फिर उसको सजा देना चाहे। फिर इसी तरह अगर कत्ल पर हद है मगर जख्मी किया तो हड्डी तोड़ दी गई, तो उस सूरत में फिर ताजीर होगी, यानी जिस हद का फेल होगा उसी के अंदर कमी पेशी होगी। हो सकता है किसी के जहन में एक सवाल आए कि अच्छा असल जिना का फेल ना हो लेकिन उससे पहले के लवाजमातों, तो फिर वो भी चीज़ ताजीर के अंदर आ जाएगी। और कबीरा गुनाह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो हैं इनका टेस्ट इतना बिगड़ जाता है कि अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कि जानी नहीं निकाह करता मगर जानिया से औ मुशरिका। ये आज दो तरह से समझिएगा, एक इसमें हुक्म है और एक खबर है। हुक्म लिया जाए तो इससे मफहूम क्या बनता है, अपने लफ्ज़ों में बताती हूँ फिर आप उसको उस पर सेट कर सकते हैं, कि किसी मोमिन औरत या मोमिन मर्द का निकाह किसी गंदी औरत या गंदे मर्द से करना हराम है। हमारे यहाँ शादियों के मौके पे सब कुछ देखा जाता है, किरदार नहीं देखा जाता। ये कहते हैं ये हाजी साहब का बेटा है, खुद क्या है, इसकी अम्मा बड़े दर्स देती थी, ये क्या है? याद रखिए अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें, जब कभी अपनी बेटियों या बेटों के निकाह करें ना, ना उस लड़के के माँ बाप को देखें, ख़ानदान को ना देखें, वो सैयद है वो फलां है वो किसके ख़ानदान से, आप बराह रास्त उस लड़के को देखें, क्योंकि नूह के घर में भी तो कनान पैदा हुआ था ना। और इसी तरह बस इतने अच्छे लड़के सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि माँ बाप सही नहीं लगते, शोहरत अच्छी नहीं। तो वहाँ हज़रत इब्राहिम की मिसाल ले लें कि आज़र का बेटा था लेकिन इब्राहिम था ना, फर्स्ट हैंड बात करें। और यही लड़की की भी रखें, ठीक है लड़कियाँ ज़्यादा अपने माहौल से मुतासिर होती हैं लेकिन ख़ास तौर पे लड़कों में ना हो। तो यहाँ एक बात यह है कि शादियाँ करते वक्त अपनी लड़कियों को देते वक्त देख लो कि लड़का गंदा तो नहीं। हमारे यहाँ पैसों की बात करेंगे, जॉब की करेंगे, बात तो शर्तें लिखा लेते हैं, कितनी देर बाद मैके लाओगे, कहाँ रहोगे, आएगी नहीं जाएगी नहीं लड़की, पूछो ज़रा नमाज़ पढ़ता है तो कहते हैं छोड़ो ना ऐसे ही फिक पड़ जाएगी, खुद ही पढ़ लेगा। ज़रा पूछो ये कारोबार क्या करता है, इसमें कोई इसकी नाजायज़ कमाई तो नहीं, तो उस पर भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़, और ख़ास तौर पे फिर अगर ये गंदी आदत हो तो फिर बाद में अगर लड़कियां रोती हैं तो फिर उसमें किसी को भी ऊपर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो है हुक्म वाली बात। अगर इस आयत को ख़बर के मानों में लें तो अल्लाह ताला ने यहाँ निकाह के लफ्ज़ को जिना से ताबीर किया, कि जानी हमेशा अपने लिए गंदी औरत पसंद करेगा, उसको पाक औरतें अच्छी नहीं लगती। आप ले आए सीधी सादी लड़की, कहते हैं मेरे भाई की बेटी है इसको खुश रखना, वो कहते हैं मुझे नहीं अच्छी लगती, ले जाओ इसको, यानी उसका टेस्ट इतना बिगड़ चुका होता है कि उसको अपने ही जैसी कोई दुनिया के अंदर मॉडर्न और फैशन ज़्यादा किस्म की लड़की ही अच्छी लगती है, उसको दूसरी जो है वो अच्छी नहीं लग सकती। तो लिहाजा ऐसे लोगों को फिर वही ले दो। नबी सल्लम के दौर में भी और हज़रत उमर के दौर में अगर कभी कोई ऐसा केस आता कि कंवारे लड़के और लड़की ने जिना किया होता, तो आप पहले दोनों को 100 100 कोड़े भी लगवाते और फिर उसके बाद उनका आपस में निकाह कराते। आज के वेस्टर्न दौर में अल्लाह ना करे अगर ऐसी की चीज़ें हों जो होती हैं, तो उसका यही हल है। बाज़ दफ़ा लड़कियां लड़के साथ रहने पढ़ने पढ़ाने की वजह से गलत हरकतें कर लेते हैं, फिर बाद में परेशानी होती है तो उसका क्या इलाज है? फिर कहते हैं आप तुम्हें इधर तो बिल्कुल नहीं करने देंगे, नहीं उधर ही करें। इस्लाम में अगर ये है सज़ा वाली बात कि अगर आपको लगे कहीं, खुदा ना खास्ता, एक लड़की थी उसने एक दफ़ा ये बात पूछी कहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसे अनमेरिड हूँ, गलती हो गई, जो भी था ताल्लुक, अब मेरी माँ मुझे कह रही है कि अबॉर्शन करवाओ तो मुझे नहीं करना, मैं क्या करूँ? वो क्यों करवाना चाहती है? कहती फिर लोगों को पता चल जाएगा, पहले उसने जिना किया अब आप उससे कत्ल करवा रहे हैं, क्या इलाज है? दोनों को कर दो शादी, उसी जगह कर दो जहाँ पे गंदगी फैली थी। कहा कि वह हुर्रि मजालिक अलल मोमिनीन, ऐसे गंदे मर्द औरतें जब कभी भी किसी पाक फैमिली में साफ सुथरी लड़कियों के पास आते हैं तभी तो फिर रोती हैं वो बेचारियाँ, और उनकी जिंदगियाँ इतनी अजीरन हो जाती हैं कि वो इसको सोच भी नहीं सकती। आगे देखेंगे, हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इंसानियत को गंदगी से पाक करने के लिए जिना और जिना की कबाहत जो है उसका तذکرہ फरमाया, और इसकी सज़ा बज़ाहर हमें बड़ी मुश्किल लगती है और कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ किया। हल्का सा हमने अंदाज़ा लगाया कि किस तरीके से वो मुआशरे जो इस्लाम से दूर हैं आज उनके अपने अंदर कितनी गंदगी फैली हुई है। अब अगली आयतों में कुछ गलत फहमियों का इजाला है। गलत फहमी क्या है? एक कि सज़ा इतनी सख्त क्यों है, तो यहाँ बताया जाएगा कि जब सज़ा सख्त है तो वो सज़ा लागू किस पर होगी, वो हालात उससे भी सख्त हैं। अगली चंद आयतें 4 से लेके आगे की, इसमें हम देखेंगे कि जिना की सज़ा किसी को कब दिलवाई जाएगी, किस तरीके से साबित होगा जिना, और अगर किसी ने किसी के बारे में कोई ऐसी बात कह दी कि उसने जिना किया है और वो उसकी कोई दलील या गवाही ना दे सका तो बात कहने वाले को 80 कोड़े मिलेंगे। जिना का फेल करने वाला 100 कोड़े खाता है तो बात करने वाला 80 कोड़े खाता है। क्या मतलब? कि जिस तरह शर्मगाह का गलत इस्तेमाल इंसान को अल्लाह की निगाहों में मुजरिम बनाता है, इसी तरह ज़ुबान का गलत इस्तेमाल भी इंसान को अल्लाह ताला की निगाहों में गुनाहगार कर देता है। तो आइए देखते हैं आयत नंबर 4 को, वल्लज़ीना यरमून अल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाती शुहदा अफजलिदूहुम समानीना जल्दा समानीना जल्दतम वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा वौलाइका हुमुल फासिकून। और जो लोग ऐब लगाते हैं हिफाजत करने वालियों पर फिर नहीं लाए 4 मर्द गवाह तो मारो इनको 80 कोड़े और ना मानो इनकी गवाही कभी भी, और ये वही लोग हैं जो नाफरमान हैं। इसके अलावा एक्सेप्शन क्या है? आयत नंबर 5, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिका वसलहू फ़इन्ना अल्लाहा ग़फ़ूरुर रहीम। मगर जिन लोगों ने तौबा कर ली इसके बाद और अपने आप को संवार लिया तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। इन दो आयात में से जो हुक्म है वो है क़ज़फ़ का, किसी के ऊपर बिन देखे इल्ज़ाम लगाना, अरबी ज़ुबान में इसको क़ज़फ़ कहते हैं। क़ाफ़ ज़ालफ़ा कुरान पाक में ये लफ्ज़ आया, ख़ास तौर पे किसी को ज़िना फुहशकारी या लिवातत का इल्ज़ाम देना, यानी किसी के बारे में ये कह देना हाँ हाँ हमें पता है उसने ज़िना किया है, हमें पता है उसके अंदर ये ख़राबी है, या किसी की फ़हाशी की तस्वीरें खोल देना या कुछ इस किस्म की बातें। इसका हुक्म क्या है? कि पहली बात है कि ये कबीरा गुनाहों में से है, अल्लाह ताला ने झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों को फासिक कहा है और ऐसे लोगों की गवाही कभी भी कबूल नहीं की जाती, गोया कि ये लोग आदिल नहीं बनेंगे, कहीं भी कोई गवाही देनी पड़ेगी तो नहीं होगी। तीसरी बात है कि ये ऐसा अमल है कि जिस पे हद नाफिज होती है। हद कौन सी? जिसका जिक्र अभी हम देखेंगे, यानी काबिले हद अमल है ये, अल्लाह ताला ने इसका तذکرہ फरमा दिया। इसकी कुछ शराइत भी हैं। बस अब ऐसा होता है कि जब कोई सज़ा सख्त होती है तो उसके ऊपर बात करना आसान लगता है लोगों को, लेकिन उसकी असल देख लें तो आप देखिए कि इस्लाम ने मुसलमानों की इज्जतों की भी हिफाजत की है। इस सूरत के आगाज़ में हमने जो बात की थी कि शरीयत के 5 मकासिद हैं जिसमें से एक मकसद इज्जत और नामूस की हिफाजत भी है, तो हद कज़फ़ असल में इसी हक को दिलाने की कोशिश है कि कोई मुसलमान किसी की इज्जत से ना खेले, लोगों को बहुत आसान ना लगे दूसरों के बारे में बात करना, स्कैंडलाइज कर देना, उनके खिलाफ़ बातें कर देना, ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं है। फिर दूसरी बात है कि हद कज़फ क्यों रखी जा रही है, ताकि किसी भी सोसाइटी में फहाशी और बेहयाई फैले ना। जब लोगों को पता चलता है कि हम किसी के बारे में बात करके भी फहाशी फैलाते हैं, तो वो कम से कम बातें करने से अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन शर्त है, किस पर यह हद कज़फ लगेगी जिसका यहाँ तस्कर है? समानीन अजलदा। आप देखिएगा, समानीन 80 को कहते हैं, समन से समाना कीमत को कहते हैं, समीना कीमती चीज़ को कहते हैं, और 80 को भी कहते हैं। तो जलदा कोड़े, 80 कोड़े लगेंगे। पहली शर्त है कि इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स मुसलमान हो, आकिल हो और बालिग हो। दूसरी शर्त क्या है कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो पाक दामन हो, अफीफ हो, पाक दामन हो, लोगों में इसकी शोहरत गंदी ना हो। अगर आप आयत पे गौर करें ना, तो अल मुहसनात का लफ्ज़ है, मुहसनातुन की जमा, और हम कितनी दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। पांचवे पारे के पहले लफ्ज़ में भी देखा था कि इसके जो मुख्तलिफ़ मानी है उसमें क्या है, किला बंद औरतें, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वालियाँ। इससे मुराद वो औरतें नहीं हैं कि जिनको कैमरा मैन भी देख रहे हैं, जो लोगों के सामने फहाशी फैला रही हैं। सब समझते हैं कौन सी औरतें इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली हैं और कौन सी अपनी इज्जत को और अपनी आवाज़ को और अपनी शक्ल को और अपनी कमर को और अपने फिगर को बेचकर लोगों में मारूफ है। अब जो लोग खुद ही अपने आप को इस नाम से मारूफ कर लें, फिर उन पर इल्ज़ाम लगाना और बात है। यानी मसलन स्कैंडल्स उठते हैं जब अदाकारों के, गुलकारों के या दूसरे कुछ और लोगों के, तो ये चीज़ देखी जाएगी कि जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया वो खुद नेक है, जैसे कि अगली आयतों में हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद अगली शर्त क्या है कि जिस पर इल्ज़ाम लगा है, मसलन जिसकी बात की, वो हद का मुतालबा करेगा। ये उसी का हक है। अगर वो कहे कि नहीं मैं इसको माफ़ करता हूँ, मेरे पे बात हुई है मैं इसको माफ़ करती हूँ, तो फिर उस पर हद नहीं लगेगी। ये अगली शर्त है, यानी जिस पे हद लगी है वो इसका फैसला करेगा कि हद लगनी है कि नहीं लगनी। फिर उसके बाद अगली शर्त क्या है इस सज़ा की, कि इल्ज़ाम लगाने वाला 4 गवाह इल्ज़ाम की सच्चाई में पेश ना कर सके। मसलन किसी को कहा, तुम्हें पता है फलां की बेटी का चक्कर है, फलां ऐसी है, फलां के उसके साथ ताल्लुक है, फलां के सेक्रेटरी के साथ है, और फलां तो वैसे ही देखो काम करती हैं, वहाँ तो और कोई होता ही नहीं, और वहाँ तुम्हें पता है वो अकेली पड़ती हैं, वो रात को भी देखा तो उनको गाड़ी में निकलते देखा। इस किस्म की बातों को आम करना और ख़ास तौर पर फिर उसमें जिना तक बात पहुँच जाए, 4 पेश कर दे तो जिस पे लगाया उस पे हद होगी, जो 100 कोड़े हैं, ये 4 पेश नहीं कर सका तो हद इस पे लगेगी। फिर इसी तरह इन 4 शर्तों में से कोई एक शर्त भी अगर नहीं होगी तो भी हद नाफिस नहीं होगी। तो इसे आप देख सकते हैं कि इस्लाम कितना ज़्यादा लॉजिकल दीन है, लोगों को कैसे बताता है। फिर आप देखिए कि जिना के कोड़े हों या हद के कोड़े हों या कज़फ के कोड़े हों, कोड़े लगाने की शर्त भी क्या है, उसकी भी कुछ हम शरायत पे बात कर लेते हैं कि कोड़े किस तरह लगेंगे। लफ्ज़ जल्दा को देखें तो जिल्द से है। नंबर एक, कोड़ा जो है वो इतने ज़ोर से मारा जाएगा कि जिल्द पे सिर्फ असर जाए। अल्लाह के नबी सल्लम ने एक मौके पे कोड़ा मंगवाया किसी को मारने के लिए, तो चेक किया, पहले आया तो बड़ा ढीला सा जैसे धागा होता है, कहा और सख्त लाओ। फिर कोई लाया तो बहुत ही सख्त लाया कि जो बड़ी ज़ोर से स्किन पे लग सकता था, तो आपने कहा कि इन दोनों के दरमियाना लाओ, तो दरमियाने दर्जे का कोड़ा हो, बहुत सख्त ना हो। तीसरी चीज़ है कि उस कोड़े के अंदर गांठें ना पड़ी हों, क्योंकि आपको पता है कि गांठ वाला हिस्सा यानी जो नॉट लगी होती है वो बहुत सख्त होती है, तकलीफ़ से लगती है। फिर इसी तरह ये है कि वो कोड़ा जो है वो दरमियाने हाथ से लगाया जाए। आपने फरमाया कि बगल ना दिखे, यानी जो कोड़ा मार रहा है वो यूँ हाथ खोल के ना मारे, बस इतना हो, यानी ये जो अंडर आर्म्स होते हैं वो ना खुले, यानी मीडियम हाथ से मारो। हमारे यहाँ ये अमूमन कितना मारूफ लफ्ज़ है कि फलां तो जल्लाद है, हालांकि आपको पता है कि जल्लादों को जो हुक्म दिए जाते थे, जो उनकी ट्रेनिंग होती थी, उसमें ये शर्त होती थी कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं तुम मारोगे, दरमियाने दर्जे से मारोगे, फिर मुँह पर नहीं मारा जाएगा। फिर इसी तरह से ये है कि कोड़े मारते वक्त उसको आगे कोड़े की 2-3 शाखें नहीं होनी चाहिए, जैसे वो ऊन के फुंदने खोल दें तो आगे ज़्यादा बन जाते हैं ना, इसी तरह कोड़ा एक शाखा होगा, ज़्यादा उसके अंदर आगे ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो उसको तकलीफ़ से लगेगा। फिर इसी तरह जो कोड़ा है उसका जो साइज़ है वो भी दरमियाना होगा। आप देखिए कि कोड़े लगाने का तरीका भी वही बता रहा है जो नमाज पढ़ने का तरीका बता रहा है, हड्डी पर असर ना जाए, गोश तक ना पहुँचे, सिर्फ स्किन पर उसका असर है। फिर अगर औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है, तो उस पर कोड़े नहीं लगेंगे जब तक कि उसका हमल वज़ा नहीं हो जाता। नफास के दिनों में कोड़े नहीं लगेंगे। फिर सिर्फ एक जगह पे नहीं लगेंगे कोड़े कि वहीं लगा लगा के चमड़ी उधेड़ दी जाए, पूरे जिस्म पर लगेंगे हल्के फुल्के ताकि सारे जिस्म पे एक ही जैसी चोट आए। फिर इसी तरह से कपड़े उतार कर नहीं मारा जाएगा, कपड़ों के साथ मारा जाएगा ताकि दर्द कम हो। फिर इसी तरह औरत है तो उसके कपड़े मजबूत बांधे जाएंगे, और औरत है तो उसको बिठा कर कोड़े लगेंगे कहीं उसका लिबास ना खुल जाए। अब आप सोचिए कि जिसको इतनी पाबंदियां दी जाएंगी, फिर ये कानून के साथ होगा कि बेतुक्का काम होगा? इसी तरह सख्त सर्दी में भी नहीं मारे जाएंगे कोड़े, क्योंकि सख्त सर्दी में भी चोट ज़्यादा लगती है, और सख्त गर्मी में भी नहीं मारे जाएंगे। फिर इसी तरह मुजरिम को मारा नहीं जाएगा, जिसको कोड़े लग रहे हैं ना, उसको ये नहीं कि एक जगह बांध दो जानवर की तरह मारी जाओ, सीधा आम खड़ा होगा, हल्का फुल्का हिलेगा तो भी मारा जाएगा। फिर इसी तरह बेहतर तो ये कि एक ही दफ़ा 100 लगा दे, लेकिन अगर मुश्किल हो, कोई बीमारी या कोई तकलीफ़ का डर है, तो 10-10 करके 10 दफ़ा भी मारे जा सकते हैं। फिर इसी तरह कोड़े मारने का काम बेवकूफ़ और जाहिल लोगों के सपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि साहिब इल्म शख्स करवाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत अली, मिक़दाद और हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु मजमईन, इनसे ये काम लिया जाता था, और आपको पता है कि तीनों साहिब फरासत लोग थे। क्यों ये शरारत है? ताकि ज़्यादती ना हो, गुस्सा निकालने के लिए नहीं है ये, और थोड़ी सी तकलीफ़ के साथ ज़्यादती और शर्मिंदगी दिलाना मकसूद है, शऊर को बेदार करना, उसकी अना को नहीं बेदार करना। इसके बरक्स अगर आज के दौर में देखें तो जेलों में जो शदीद सज़ाएं हैं, अल्लाह की बना, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। शरीयत पर तनकीद करने की बजाय लोगों को शरीयत सिखानी चाहिए, ताकि उनके दिल में इस किस्म की गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हो जाएं, और क़यामत के दिन की पकड़ से इंसान बच जाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि ये जो बात है कि वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, कि अब ऐसे लोग जिन्होंने किसी के ऊपर कोई बात खोल दी, उनकी कभी भी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। बाज़ लोग कहते हैं कि इसकी कभी भी नहीं की जाएगी, बाज़ कहते हैं कि अगर वो बाद में तौबा कर लेते हैं और अपना साहिब अदल होना साबित कर देते हैं, तो फिर उसके बाद उनकी गवाही को कबूल किया जाएगा, क्योंकि तौबा से तो हर गुनाह माफ़ होता है। लेकिन याद रखें कि गुनाह साबित हो गया तो तौबा से कोड़ों की सज़ा तो माफ़ नहीं होगी। फिर तो हर एक कहते मैंने तौबा कर ली, तौबा तो दिल का अमल है, तौबा भी कोई कहते ना कर ली, कोड़े फिर भी लगेंगे। हाँ, आइंदा के लिए वो काम उससे रुक जाएगा, सज़ा दुनिया में मिलेगी, लेकिन यह कि जो बातें मर्दूदु शहादा या फासिक होना उसके नाम पर था, उसको फिर उससे हटा लिया जाएगा। आप देखिए कि हर बंदे के साथ मामला उसके हिसाब से किया जाएगा। फिर इसी तरफ देखिए कि इसमें स्टेटस को नहीं देखा जाएगा हद बंदी के अंदर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से एक रिवायत है बुखारी और मुस्लिम में, कि एक मौके पे एक औरत फातिमा, जिसने चोरी की, लोगों ने अल्लाह के नबी के मुंह बोले बेटे हज़रत उसामा जो थे, यानी बेटे के बेटे, जैद के बेटे उसामा थे, उनको ऐसी बना के भेज दिया जिसको कहते हैं सिफारशी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमसे पहले की कौमें इसलिए तबाह हो गईं कि जब उनमें से कोई अमीर चोरी करता है तो उसको माफ़ कर देते, कोई गरीब करता तो उसको पकड़ लेते हैं। आज हमारे यहाँ क्या है, कितना फ़र्क पड़ गया। आप देखिए, कोई पैसे वाला पिए तो वो ड्रिंक कर रहा है, और कोई गरीब पिए तो कहते हैं ठर्रा पीते हुए पकड़े गए। कभी अखबारों की खबरें भी पढ़ें तो हंसी भी आती है, फलां झुग्गियों में छापा पड़ा, वहाँ लोग चरस पीते हुए पकड़े गए, ठर्रा पीते हुए पकड़े गए। बड़े बड़े होटलों में कोई छापे नहीं है, बड़े होटल में जाके कोई पिए तो वो वाइन है और वो विस्की है, कोई लॉस एंजलस में जाके करे तो वो गैम्बलिंग है, और अपने मुल्कों में कहे तो कहते जुआ खाना, जुआ खेलते हुए पकड़े गए। किसी को ब्लैक जैक के नाम पे ग्लैमराइज कर दिया, नहीं, हर एक पे, हर जगह, हर तरह से उनका मामला होगा कि वो उस चीज़ के साथ अपना मामला दुरुस्त रखेंगे। यकीन करें कि अगर आज ये सज़ाएं लागू हो जाएं, कितनी बहू बेटियों की इज्जतें महफूज हो जाएं, कितने गैंग रेप जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, खुले फिर रहे हैं लोग, आज उन पे फिल्में बनाते हैं वो लोग जो बुराई को ख़त्म करने के लिए उठना चाहिए, जिनको वो कहते नहीं, हम ये फिल्में इसलिए बनाते हैं कि लोगों को दिखाएं। आपने एक किरदार सुना होगा, कुछ साल पहले की बात है, फूलन देवी के नाम पे एक हिंदुस्तान से थी, और उनको पूरा डाकू के रूप में पेश किया, और उनके साथ जो तकलीफ है उस पर एक फिल्म बनी, पूरा उनके साथ वो गंदा फेल करते हुए फिल्मों में दिखाया गया, कि जो रियल में तो शायद 4 लोगों को नहीं पता था, फिल्म में आया तो दुनिया भर में फैल गया। उस पर उन्होंने खुद कमेंट दिया था कि अगर इनकी माँ के साथ ऐसा हुआ था तो फिर मैं देखती कि इस तरह के ये काम करते। ये भी एक शैतान की चाल है कि हम ऐसी चीज़ें इसलिए करें कि लोगों को अवेयरनेस दें। याद रखें, शोहरत देने में और अवेयरनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, अवेयरनेस देनी है तो इन सज़ाओं को भी आम कीजिए। आप जिना आम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लोगों को वाच दे रहे हैं ताकि लोग देखें कि हमारे लीडर कैसे हैं और फलां कैसा है, तो फिर सज़ाएँ भी दिखाएँ। वरना तो आप देखें कि मिसाल है कि आप किसी को चावल बहुत पसंद है और बड़े मज़े के चावल पके हैं और उसकी खुशबू फैलाते जाएं, कोई भी नहीं रुकेगा। कि जिसको नहीं पता था वो भी खाएगा, जिसको मन है वो भी खाएगा। हाँ, आप अगर चावलों के अंदर कोई सुंडी डली हुई है या उसके अंदर कोई गंदी चीज़ है वो दिखाइए। सज़ाओं के ऊपर बात करो तो कहते हैं इस्लाम बड़ा सख्त है, और जब ऐसी चीज़ों को आम करने की बात है तो इश्तहार बना दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो इन चीज़ों से नसीहत लें। फिर पीछे हमने देखा कि एक ताइफा तो मिनल मोमिनीन हो जो इन सारी सज़ाओं को देखे। इसी तरह जब ये किसी के ऊपर तोहमत लगाने वाली बात है तो इसमें भी कुछ लोगों के सामने हो। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि टीवी चैनल्स को बुला लिया जाए, CNN के नुमाइंदे वहाँ मौजूद हों, पूरा प्रेस मौजूद हो, थोड़े से लोगों के सामने हो ताकि लोगों के लिए इबरत हो। क्यों भाई, आप कहेंगे क्यों ना, CNN वाले तो इतनी खिदमत करते हैं, वो तो सारी दुनिया में झट से खबर फैलाएंगे। लेकिन असल बात यहाँ क्या है, नसीहत इबरत के लिए दिखाने लाला या तज़क्करून। तो ये बेचारे क्या जो कुफर पे हैं वो नसीहत क्या लेंगे। ये नाम मैंने कोई तासुब से नहीं लिया, सिर्फ मैंने सुना हुआ है, ना मेरा कोई इसके बारे में ज़्यादा इल्म है। लेकिन मारूफ बात क्या है कि इन चीज़ों को उनको दें जो इबरत लें। इबरत वालों के लिए ये चीज़ें फ़ायदा होगी। पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करना चाहिए कि खबरनामे में ऐसी लड़कियों को दिखा दिया जाए, सारी ज़िंदगी के लिए इज्जत के ठप्पे लग जाएं, अखबारों में उनकी तस्वीरें छप जाएं। बल्कि अगर ऐसे चैनल्स और ऐसे लोगों को आप भेजेंगे, दिखाएंगे, तो वो तो और इस्लाम के ख़िलाफ़ गुस्सा निकालेंगे। और आप देखें ऐसी तस्वीरें भी इस्तेमाल होती हैं हमारे ख़िलाफ़। कहीं किसी मुल्क में अगर एक मौके पे किसी औरत पे कोई जुल्म होता हुआ दिखाया जाए, पूरी दुनिया में हर मौके पे इसको लाते हैं। फिर अब देखिए कि ये जो जिना और इससे रेलेवेंट सज़ाएं हैं, ऐसे लगता है कि ये इस्लाम ने शुरू की हैं। हालांकि ये नोट करें कि इस्लाम ने ये शुरू नहीं की, तौरात में भी यही सज़ा थी, इस्लाम ने उसको वेरीफाई किया। तौरात की जिन सज़ाओं को इस्लाम ने मनसूख नहीं किया वो सारी बाकी हैं आज भी। हाँ, जिनको मनसूख कर दिया वो ख़त्म हो गई हैं, कुछ चीज़ें इस्लाम में नहीं भी आईं, लेकिन लोग नहीं समझते। तौरात की बरकरार सज़ाएं जो हैं वो कुरान में नहीं बल्कि हदीस में मौजूद हैं। अगर आपको कुरान में आयत वो ना मिले तो हदीस में उसके ऊपर अमल मौजूद हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी के दौर में यहूद का एक मुकदमा आपके पास पेश किया गया, जिना किया था उन लोगों ने। अल्लाह के नबी ने पूछा, उनका आलिम भी था, इब्ने सूर्या उसका नाम था, कहा कि बताओ कि तुम्हारी किताबों में क्या हुक्म है। कहने लगे, नहीं बस वो उसका मुँह काला करके गधे पर शहर में चक्कर लगवाएं। कहा, अच्छा किताब लाओ। जब किताब लाए तो उसने उस आयत को छुपा लिया, हाथ रख लिया उस पे आयत रजम पे। तो वहाँ अब्दुल्ला बिन सलाम भी मौजूद थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी इससे कहें हाथ उठाए, क्योंकि वो खुद भी आलिम थे, इस्लाम से पहले यहूद के आलिम थे। तो जब हाथ उठाया गया तो उसकी ख़यानत खुल गई कि लिखा हुआ था। आपको पता है कि तौरात में जानी औरत को कमीनी औरत कहा गया है, को हमारे यहाँ एक गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मुस्लिम, अबू दाऊद और अहमद की रिवायत में आता है कि फिर अल्लाह के नबी ने यहूदी औरत और मर्द को रजम किया था। किसकी सज़ा के तहत पे? तौरात की सज़ा, उनके ऊपर तौरात का कानून लागू हुआ, तो उनकी किताबों में ताज लगते हैं आपको। आप यहूद और नसारा को देखिए, आप शक भी कर सकते हैं कि इनकी किताबों में कभी ये चीज़ें थीं कि इनको सज़ा मिले। आजकल तो लीगलाइज किया हुआ है, क्यों? कि जब कौमें अपनी किताबों पर अमल नहीं करती तो वो किताबें लिखी हुई अलमारियों की जीनत बन जाती है, अमल में वही होता है जो आज भी मौजूद होता है। जो लोग आज एतराज़ करते हैं उनको उनकी किताबें खोल के दिखा दें कि ठीक है हम भी निकाल लेते हैं अगर आप निकाल लें।